शांति। ओम शांति। ओम शांति। याद है तीनों ओम शांति का अर्थ? पहला क्या? शांत स्वरूप हूं। दूसरा और कोई बताओ। दूसरा ओम शांति मन, मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो ये स्मृतियां हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। और किसी को ओम शांति कह रहे हो भले, लेकिन पहले तो अपने को ही याद दिला रहे हो ना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूं और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शांति के अनंत सागर है। तीनों बड़ी बातें हैं ना। ऐसे थोड़ी हम शांत हो जाएंगे। अंदर तो अग्नि जल रही है विकारों की, उसमें शांत होना इतना सहज नहीं है। अभी कहेंगे हाँ मैं शांत रहूंगा, लेकिन बाहर जाके एक फोन आ गया तो शांति भंग हो जाएगी। तो रोज ये अभ्यास, स्मृति को जागृत करने का अभ्यास और ये तीन बातें जो बताई वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जब वो कनेक्शन होता है अपने अंदर, उसकी जागृति आती है। जागृति भी स्मृतियों के ही कनेक्शन से आती है। अब जैसी स्मृति रखोगे वैसा ही भविष्य बनता है। तो ये स्मृतियों को अभ्यास करनी है, तभी हम आगे चल के हमको फील होगा कि हमको क्रोध की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है, हमको किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आई नहीं रही है, क्योंकि स्मृति से अंदर समृद्धि आ गई। ऐसे ही राज योग मेडिटेशन का जब अभ्यास करते हैं तो अपने को हम उसमें आत्मा निश्चय करते हैं। आत्मा मेडिटेशन कर रही है, शरीर उस समय साक्षी होकर के रहता है। जहां पर भी बिठाया है आपने शरीर को, जैसे अभी सोफा पर बिठाया, घर में कहीं और बिठाया, बाहर गए तो कहीं और बिठाया, लेकिन योग करने वाली कौन है? चैतन्य आत्मा है। पता चला ना कि हम जीवंत है, चैतन्य है, जिसका नाम दिया गया है आत्मा। आत्मा पे कोई दूसरा नाम नहीं पड़ता, शरीर पे अलग अलग नाम पड़ते हैं, है ना? कोई प्रेम प्यार का नाम भी होता है किसी का, लाड़ वाला नाम भी होता है ना? तो शरीर पे आप भले कितने भी नाम रख दो पर आत्मा पर कोई नाम नहीं है। आत्मा पर विशेषता लगती है। जैसे कर्म आत्मा करेगी वैसे आत्मा के साथ विशेषता जोड़ी जाती है। जैसे पुण्य आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, मनुष्य आत्मा, विशेषताएं जुड़ी है पर कोई नाम नहीं दिया जाता है। मंदिरों में एक और नाम है, शिव लिंग जो है उसके साथ जो छोटे छोटे लिंग बनाते हैं वो हम आत्माओं का प्रतीक है, जो परमात्मा के साथ उनकी पूजा होती है। तो उसे क्या जाता है छोटे लिंगों को? शालिग्राम। तो आत्मा या भक्ति में मंदिरों में शालिग्राम बुलाते हैं, बाकी कोई नाम नहीं है। तो जब हम आत्मा निश्चय करके बैठते हैं तो कोई नाम रूप देह के संबंधित कुछ भी नहीं याद कर रहे हैं, बस मैं चैतन्य ऊर्जा स्वरूप अनादि अविनाशी आत्मा तेजोमय ज्योतिर्बिंदु। फिर क्या याद रखते हैं कि कहां पर है हम शरीर में, तो दो आंखों के पीछे मस्तिष्क के पास मैं आत्मा बैठी हूं, विराजमान हूं, अपने अकाल तख्त पर हूं। अकाल तख्त क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मृत्यु को नहीं पाती है, तो वो जहां बैठी है उसको अकाल तख्त कहते हैं, काल जिसको खा नहीं सकता। तो आत्मा निश्चय कर पहले हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, उसमें स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले एकदम तो स्थित नहीं हो जाएगी आत्मा, तो उसके प्रति विचार दे दे करके उस स्वरूप को लाना है। अगर आप उस समय शरीर के संबंध के विचार करते रहेंगे, संबंधियों का विचार करेंगे, कारोबार का विचार करेंगे, तो आत्मा निश्चय नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज जब करनी है तब करने से सफलता मिलती है। तो जब मेडिटेशन शब्द सुना, माना क्या करना है, अपने को आत्मस्वरूप में स्थित करना है, तब आपका राजयोग शुरू होता है। आप कहेंगे अरे ये तो कभी नहीं किया, कितना मुश्किल है, तो फिर इतनी सारी भक्ति क्यों की, प्रश्न वो उठता है। कुछ तो पाने के लिए भक्ति की ना, अभी सीधा भगवान थोड़ी मिल जाएगा, पहले अपने आप को तो समझो। स्व अनुभूति से परमात्म अनुभूति होती है, इसीलिए आत्मा का लेसन तो पक्का करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो इसीलिए आत्मा समझकर बैठना है। शरीर को कहना है तुम साक्षी होके बैठ जाओ, मदद करो, मुझे सहयोग दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अभी मैं अपने लिए टाइम दे रहा हूं, मैंने अपने साथ अपॉइंटमेंट लिया है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अपने साथ का अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि फालतू है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो जीवन में कभी अकेलापन फील होगा? नहीं होगा। लेकिन यही हम नहीं करते ना, अपने साथ कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेते, तो अकेलापन फील होता है, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, रूठ जाते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। तो आत्मा समझ के हमें परम धाम में जहां शिव बाबा स्थित है सबसे ऊपर, उनके साथ अपने मन बुद्धि के डोर को जोड़ना है, भले नहीं किया हो कभी, अभी करना है। समय का आवाहन है, पुकार है कि अभी तक सारा शारीरिक रूप से करते आए, जो पूजा आराधना तीर्थ यात्रा उपवास सब शारीरिक रूप से करते आए, अभी एक स्टेप आगे लो। कब लोगे? जिसमें आध्यात्मिक अनुभूति में आना है अभी, तो आध्यात्मिक अनुभूति के लिए भीतर जाना पड़ेगा, अपने को आत्मा निश्चय कर फिर भीतर से कहां जाएंगे, जहां पर पांच तत्व नहीं है, जहां पर ये शारीरिक दुनिया नहीं है, जहां पर हम ओरिजिनली अपने आत्मस्वरूप में रहते, परम धाम में, फिर वहां शिव बाबा से अपने को जोड़ना है। एक बार परम धाम चले गए फिर तो मेहनत छूट गई, क्योंकि शिव बाबा आप पे ही अपने को बुला लेंगे, अपने पास खींच लेंगे, जैसे वो चुंबक खींचता है ना ऐसे। अच्छा, क्यों अपने पास बुलाते हैं शिव बाबा? ताकि आत्मा जो तमो प्रधान हो गई है, आत्मा जो शक्तिहीन हो गई है, क्यों शक्तिहीन हो गई है, क्योंकि उसमें विकार बहुत काम करने लगे हैं, तो अभी फिर से हमको शक्ति भरना है। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा से वो शक्ति आएगी हमारे अंदर, नहीं, हमारे अंदर ही है, लेकिन शिव बाबा की जो शक्ति आती है वो हमारे अंदर रही हुई शक्ति को फिर से जागृत करती है, समझा, जागृत करती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसा, है ना, तो आत्मा की चार्जिंग करते हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा की भाषा कौन सी है? आवाज नहीं है ना, निर्शब्द, क्या कहते हैं, साइलेंस, नीरव शांति, साइलेंस। जैसे साइंस शब्द है ना विज्ञान के लिए, ऐसे आध्यात्मिकता के लिए शब्द है साइलेंस, क्योंकि परमात्मा की भाषा है साइलेंस। तो वो जो पावर देते हैं उसको भी क्या कहते हैं, पावर ऑफ साइलेंस। उनकी जो शांति है वो जब आत्मा पे भरपूर होती जाती है तब आत्मा की जो पावर है वो जागृत होने लगती है। इसीलिए परमात्मा का कभी बदलाव नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो अपनी शक्ति आत्मा में भर रहे, नहीं, वो मदद कर रहे हैं आत्मा को अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए। तो उनमें तो जितना भी है उतना ही रहेगा ना, थोड़ी कम होगा। इसीलिए उनको अनंत बेअंत ऐसे शब्द दिए गए हैं। हम आत्माएं बेअंत अनंत नहीं रह सकती है, क्योंकि हम सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं ना। पर वो आत्मा का रोल क्या है, परमात्मा का। जब आत्माएं शक्तिहीन हो जाती है तो उनको पावर भरना और फिर वापस परमधाम भी ले जाना और नई दुनिया के योग्य बनाना, नए चक्र के लिए योग्य बनाना, ये परमात्मा का परम कर्तव्य है जो कोई मनुष्य का नहीं है। तो नया सब्जेक्ट हो गया ना। तो हर बार जीवन में हमको कुछ नया नया सीखने को मिलता है, तो अब के समय में ये नया ज्ञान है जो कोई मनुष्य पहले दे नहीं पाया है। सबने दिया कुछ ना कुछ ज्ञान, सबने दिया, पर ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा ही देते हैं, उनका ही काम है। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे, ऐसे बोला जाता है। तो ये परमात्मा का कार्य है। जब वो पावर ऑफ साइलेंस से अपने को चार्ज करते हैं तो वो पावर ऑफ साइलेंस अपने अंदर अलग अलग उपयोग के लिए उस शक्ति का रूप धारण करती है। जैसे नहीं दिखाते असुरों का संहार करने के लिए शिव ने क्यों एक ही प्रकार की शक्ति निर्माण नहीं की, अलग अलग शक्ति, है ना, जिसका अलग अलग रूप होता था। फिर उसको और अलग करने के लिए वाहन भी अलग दिया, इंस्ट्रूमेंट भी अलग दिया, और जो ये हथियार है वो भी अलग दिए, ताकि सबको मालूम पड़े ये शक्तियां अलग अलग है, एक नहीं है। मना थी तो एक ही पावर ऑफ साइलेंस, लेकिन जब हम कर्म में उसको यूज करते हैं तो वो अलग अलग रूपों से यूज हो सकती है। तो आज हम ऐसे एक मॉडल जो हमने तैयार किया है वो 8 शक्तियों का मॉडल है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 8 शक्ति ही है, उसके बाद उसका भी परिवार बहुत बड़ा है। जैसे विकारों का परिवार बड़ा है ना, अब जैसे आत्मा के 7 गुण है ना, आत्मा के 7 गुण, तो वो 7 गुण 7 गुण ही है क्या? आत्मा के गुण याद है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शांति और शक्ति। तो ऐसा नहीं है कि ये 7 गुण ही है, उसका परिवार है पूरा। समझो आप प्रेम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप समझदारी भी यूज करेंगे, आप दया भी यूज करेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें प्रेम के अंदर ही आती है। समझा। तो प्रेम एक मुख्य शब्द दिया गया है और उसके साथ पूरा परिवार है गुणों का। तो ऐसे ही शक्ति के भी बड़ा परिवार है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप से इसलिए देख रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में याद रहे। याद रहेगा तो आत्मा अपने आप अलग अलग उपयोग करने लगेगी, उसी को रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यही 8 शक्तियां आप अलग अलग ढंग से यूज कर सकेंगे, अलग अलग समय सिचुएशन में यूज कर सकेंगे, तभी तो परिस्थिति को पार कर सकेंगे ना। राजयोग यही तो ट्रेनिंग देती है। कैसा मत बोलो परिस्थिति मेरे जीवन में ना आए, वो तो आएगी, लेकिन उस पर मैं कौन सी शक्ति यूज करूं जिससे मैं उस परिस्थिति को पार करके आगे जाऊं। तो ये भी तो सफलता का ही रूप है ना। तो अभी तो दुनिया में दुनियावी दृष्टि से सफलता देखते हैं, क्योंकि चक्र बना ही उसके लिए था। पर अब जब वापस घर जाना है तो वापस अपने को रिटर्न मोड में आना पड़ेगा, जिसमें हमें आंतरिक शक्तियों का विकास कर अभी आने वाली परिस्थितियों को पार करना है। बस इतना, माना अपना स्टैंडर्ड जरा हायर हो गया है, PhD तक आ गए हा? और हर एक समझे कि हाँ मैंने एडमिशन लिया है PhD के लिए। हर एक समझे, जिसने PhD किया है डबल PhD, ठीक है। लेकिन हर एक मनुष्य आत्मा को ये करना पड़ता है, सारे चक्र में एक ही बार करना पड़ता है अंत में। तो अभी हम वो अष्ट शक्तियां देखेंगे। सॉरी, आज इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में समझाएंगे। तो सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ। पावर टू विड्रॉ माना संकीर्ण करने की शक्ति, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं कि चलो बाहर के वातावरण से अब हम थोड़े समय के लिए न्यारे हो जाते हैं, डिटैच होकर के अब अपने अंदर आंतरिक जगत की ओर जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। थोड़े समय के लिए सबको मन बुद्धि से अलग करके केवल अपने लिए आत्मा के लिए टाइम देना है। जब ऐसे शब्द बोल के अपने को स्मृति देते हैं तो तब क्या कर रहे हैं, ये दुनिया का जो विस्तार है उसको संकीर्ण कर रहे हैं। हाँ, उससे एक प्राणी याद आता है, कछुआ। कछुआ जब भी कर्म करता है तो अपने अंगों से करता रहता है, लेकिन जब उसका उसकी क्रियाएं खत्म हो जाती है तो वो सहज ही सारे अंग को संकीर्ण लेता है। इसलिए कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसका जो पीठ दिया गया है वो इतना कड़क होता है कि उसे कभी नुकसान नहीं होता, पर अंग एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो जो शत्रु आया है वो अंग को खाना चाहता है, लेकिन वो अंदर संकीर्ण कर लेता है, तो अपने को सेफली रखता है। ये उसके रक्षा का एक विधि है। ऐसे ही आत्मा को भी तो बुराइयों से, विकारों से अपनी रक्षा नहीं करनी है, करनी है ना। तो उसके लिए उसे ये शक्ति को यूज करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन के टाइम ही सबसे बेस्ट ये यूज होता है। दूसरे टाइम भी जहां हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, आपने गीत सुने होंगे बाहर 10:30 बजे 12 बजे जो गीत बजते हैं, 5:30 बजे, वो ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बोलते हैं हम। माना हम दौड़ रहे हैं, कहीं कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वो गीत बजता है तो वहीं खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और फिर से अपने को संकीर्ण करते हैं विस्तार से। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ती है ना, या सिग्नल पे रुकना पड़ता है, पर टेम्पररी होता है ना, फिर ग्रीन सिग्नल होती है तो गाड़ी फिर से जाती है, माना टेम्पररी पॉज, मोबाइल में होता है ना पॉज, पॉज करते तो थोड़ी देर के लिए वो चित्र वही का वही रुक जाता है, फिर प्ले करेंगे तो वापस चालू होता है। तो आपकी मर्जी है ना कब तक पॉज करना है, आपकी मर्जी है कब वापस उसको प्ले करना है। ऐसे ही जीवन यात्रा में भी थोड़े पॉजेस बहुत जरूरी है। आप अपने आप निर्णय लेकर के, भले गीत बजे न बजे, आप अपने आप निर्णय लेकर बोलो अब मुझे अपने आप को संकीर्ण करना है, एक मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, जैसे भी आपको टाइम मिले। आप जितना ये करते जाएंगे उतना जीवन तो विस्तार ही है, लेकिन आपके जीवन का जो सार होगा ना वो आपको रियलाइज होता जाएगा कि मैं किस लिए इस धरती पर हूं, और आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा वो सार पे रहेगा। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपके सामने तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम प्रॉब्लम के ही बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और जितना आप प्रॉब्लम के लिए सोचेंगे उतनी मन बुद्धि थक जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना, एकदम उदास हो जाती है। तो ये संकीर्ण शक्ति हमें सिखाता है कि तुम्हें प्रॉब्लम को नहीं समाधान की तरफ देखना है। तो जब आप अपने जीवन के सार को महसूस करते जाते हो तो आप समाधान स्वरूप बनते जाते हो, प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं, प्रॉब्लम का समाधान करने वाले बन जाते। तो वो शक्ति आपको इसमें काम आती है। तो करना है ना आपको प्रॉब्लम का समाधान। और आज की परिस्थिति कैसी है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है प्रॉब्लम पे, और फिर भी हम जूझ रहे तो कितनी शक्ति व्यय जा रही है ना, समाधान तो मिलेगा नहीं, और ऐसे ही हम बहुत डिस्टर्ब होते जाते, फिर दूसरों को भी करते जाते। इसीलिए समाधान स्वरूप बनने के लिए ये बार बार अपने को संकीर्ण करने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि हमारे नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स पर हम ब्रेक लगा सके। जल्दी तो जाएंगे नहीं, तो एटलीस्ट ब्रेक तो लगाए। किताब पढ़ते हैं, किताब कितनी बड़ी होती है, कभी 100 पेज, कभी 200, कभी 300, कभी 500, कितनी बड़ी होती है ना। लेकिन अगर कोई हमें मिलता है तो क्या पूछता है ये किताब किस चीज की है, क्या है, तो हम थोड़ी 500 पेज सुनाएंगे, उसका सार सुनाते हैं ना। तो सार से वो पकड़ लेता है कि मुझे ये किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो हमारे जीवन के सार से दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा जीवन जीना है नहीं जीना है। आप थोड़ी विस्तार सुनाने बैठ जाएंगे तो वो चमक आएगी ना आपके चेहरे पर, आपका ओरा बढ़ेगा ना सारी युक्त रहने से, तो सब प्रेरणा लेते हैं। साधारण टेंशन वाला चेहरा होता है तो कोई प्रेरणा लेगा? इसीलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। माना आप कौन सी शक्ति यूज कर रहे हैं अपने लिए, संकीर्ण की शक्ति। अब हम बाहर गांव जाते हैं तो रूम में तो सब फैलावा होता है ना, होता है ना, फैलाते ना सब कुछ निकाल निकाल के, हाँ, फिर क्या करना पड़ता है? नहीं, पैक करना पड़ेगा ना, माना आपको वही देखना पड़ेगा जो आपको जरूरी है, जो ले जाना है, इसको कहते संकीर्ण करना, और बाकी का वापस कबाट में चला जाएगा। ट्रेन में जाएंगे तो सामान अधिक होगा, फ्लाइट में जाएंगे तो सामान और कम होगा। तो आप कौन सी शक्ति यूज कर रहे हैं, जो विस्तार है आपके कमरे में उससे आप अपने आप को संकीर्ण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नई बात कर रहे हैं हम, लेकिन रियलाइज तो करें कि हम कौन सी शक्ति यूज कर रहे हैं। कई लोग उसपे कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, फिर उनकी वाइफ है, उनकी माँ है, वो सब करती है, मना नहीं कर पाते हैं ना, यूज संकीर्ण की शक्ति। ऐसे बोल देंगे नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तुम कर दो। उसको समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो ऐसा भी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इस शक्ति का विकास करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी सडनली अचानक कभी भी कुछ भी होगा तो आप विस्तार में ही रहेंगे तो अशांत हो जाएंगे। आप संकीर्ण कर पाएंगे तो शांत रहकर सब कुछ ठीक तरह से आप देख पाएंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो अच्छी बात है ना। तो इसको कहते हैं संकीर्ण करने की शक्ति या पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ बना इंग्लिश में दो प्रकार के विड्रॉ होते हैं। एक होता है व्यक्ति उसमें जाना ही नहीं चाहता है, वो उधर से भागना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, कोई ना कोई बहाना करके उसके आगे से चला जाता है। हम उस विड्रॉ की बात नहीं कर रहे। कई बार जो डिप्रेशन में व्यक्ति होता है उसके लिए भी डॉक्टर ये शब्द यूज करता है कि ये एकदम विड्रॉ हो गया है। तो हम वो नेगेटिव रीति से नहीं बता रहे। ये बहुत यूजफुल शक्ति, बहुत उपयोगी शक्ति है। कैसे, गाड़ी को खाली दौड़ाओ दौड़ाओ मत करो, पॉज करने से भी पेट्रोल डलेगा ना शिव बाबा से, नहीं? हम पॉज करेंगे हर जगह से न्यारे हो जाएंगे उतने दो मिनट के लिए, तो शिव बाबा को कितना टाइम लगेगा अपने को चार्ज करने के लिए। तो अपनी गाड़ी भी, आत्मा भी चार्ज होती रहेगी सारे दिन में भी। तो रात को क्या होगा, सोने से पहले भी हमारे पास शक्ति जमा होगी, क्योंकि हमने शक्ति यूज भी की लेकिन संकीर्ण भी की। तो रात को थोड़ी जमा होगी ना, वो जमा शक्ति दूसरे दिन भी काम आएगी। तो सुबह उठेंगे तो अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक, फ्रेश। सारी शक्ति यूज हो जाती है तो सुबह भी थके हुए होते, तो ये डिफरेंस हो जाता है लाइफ में, समझा? फिर दूसरी शक्ति, लेकिन ये संकीर्ण की शक्ति यूज करने के लिए हमारे अंदर कौन सी योग्यता चाहिए? क्योंकि जब हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं ना, तो भी ये शक्ति बहुत यूजफुल होती है। जब भी एक दो व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? कौन सा? वही कम्युनिकेशन स्किल की पूछ रही हूं कि कौन सी जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल कौन सा? जी, कम से कम शब्दों से कम्युनिकेट करना, ओके है? और वाइब्रेशन, और सुनो, आपको जो थोड़े शब्दों में व्यक्त करना है उसके लिए पहले आपको अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा, तब आप कर सकेंगे। जैसे कल आप देखो दो घंटा सुने, पर सच्चाई, सच्ची बात बताओ, दो घंटा सुनने से आपको कितना याद रहा? 5 मिनट का, 15 मिनट का, एक ही सेंटेंस? वी डोंट नो, क्योंकि आजकल सुनना बहुत कम हो गया है। ये साइंटिस्टों की रिसर्च है, बहुत कम हो गया, हम सुन नहीं पाते। सुना? तो इसीलिए विड्रॉ होने के लिए हमें अच्छी तरह से पहले सुनने की अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। जितना सुनने की योग्यता को बढ़ाएंगे उतना संकीर्ण कर किसको मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है वो आपका सही होगा। नहीं तो बहुत सारा वेस्ट हम बोलते रहते हैं, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन देते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। और प्रतिक्रियाएं देने की जरा भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप धरती पर प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं आए हो, आप क्रिया करने के लिए आए हो। तो जब सुनते हैं तो उसके बाद जब आपका कर्म शुरू होता है तो आप वो सही कर्म ही करेंगे, भले बोलने के रूप में लेकिन सही करेंगे। खाली प्रतिक्रिया नहीं देंगे। प्रतिक्रियाएं बहुत होती है ना तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। जो वार्तालाप है वो एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। चाहिए आपको ऐसा? किसी के साथ भी नहीं ना, क्योंकि सत्युग में ऐसा कभी होता ही नहीं था। इसलिए अभी भी मन कहता है नहीं भाई, शांति से एक दूसरे का प्यार से सुने समझे घर चले, है ना? तो फिर ये शक्ति यूज करनी पड़ेगी दिन में एटलीस्ट 5-6 बार। बोलो बस अब मेरा टाइम आ गया, मेरे को अपने साथ रहना है 1 मिनट के लिए। तो थोड़ा डिसिप्लिन भी आ जाएगा ना अपने अंदर, नहीं तो हम कभी सोचते नहीं है ऐसा सिर्फ चीज। 100 के स्पीड पे बस गाड़ी दौड़ती रहती। तो क्या बोला? पावर टू विथड्रॉ। जैसे ग्रामर में एक पूर्ण विराम होता है, एक अर्ध पूर्ण विराम होता है, तो ये जो है ना अर्ध पूर्ण विराम है, कॉमा। इंग्लिश में हमको ग्रामर में बहुत मना स्ट्रिक्ट होती थी हमारी टीचर, जहां कॉमा लगाना नहीं लगाया तो बस गए काम से आप। तो जीवन में उसका मूल्य है तभी तो ना। तो पावर टू विड्रॉ माना आप सारे दिन के कर्म में बीच बीच में कॉमा लगाओ, फिर से आत्मा को अपना टाइम दो, रिचार्ज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, रिफ्लेक्ट कर सके कि मेरा कैसा रहा आधा दिन, फिर आगे बढ़े। आप देखेंगे कि उससे भी घर में काफी शांति का वातावरण वाइब्रेशन फैलता है, ऑफिस में भी, और आंखें खोल के भी कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हो, इतना नेचुरल हो जाता है। उसके बाद दूसरा पावर है पावर टू पैकअप। दूसरा नंबर का पावर है पावर टू पैकअप, माना समेटने की शक्ति। वो जो आपने बैग में डाल के जो वापस कबाट में डाल दिया ना सारा, उसको कहते हैं समेटने की शक्ति। आप ऐसा भी कर सकते हो ना, बैग पैक करके निकल जाओ, बाकी का सामान देख लेगा जो घर में पीछे है वो। तो आपने क्या किया? संकीर्ण तो किया लेकिन समेटा नहीं। इसीलिए कई ऑफिस में ये स्ट्रिक्ट नियम होता है कि जब तक आपका दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं होता आप ऑफिस छोड़ नहीं सकते। कोई कोई ऑफिस में उसको, दूसरे ऑफिस में होता है नहीं हुआ चलो कल कर देंगे, टाइम पे जाना है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो ऑफिस आपको कहती है काम कंप्लीट करके ही जाना है, वो ज्यादा पे देती है, सैलरी ज्यादा देती है, और यहां आपकी फिक्स सैलरी होगी, कितने साल तक हो सकता है प्रमोशन भी ना हो। इतना फर्क हो जाता है। एक बार अपने धृतराष्ट्र ने देखा कि जो भीम है उससे बहुत दान देने का बहुत अंदर आता है, तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, और भीम ने रोज दान देने का नियम बनाया था। फिर एक दिन बहुत सारे लोग आए और उसका समय समाप्त हो गया, तो एक रह गया, तो उसको बोला तुम कल आना, कल दे देंगे। फिर तो थोड़ी देर के बाद पूरे शहर में ढंडोरा पीटना शुरू हो गया कि भीम तो अमर हो गया, भीम तो अमर हो गया, भीम तो उसके कानों तक आवाज आई। वो सोची ये क्या है, तो धृतराष्ट्र के पास जाके पूछा ये क्या हो रहा है अनाउंसमेंट, भीम अमर हो गया। तो बोला आपने आज जो दान किया उसमें एक व्यक्ति को आपने बोला कल दूंगा। बोला हाँ समय पूरा हो गया था। बोला आपको पता है कल आएगा, क्या भरोसा है कल आएगा आपके लिए? जो आज किया वही गिनती में आएगा, कल किसी का कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए समेटने की शक्ति बहुत जरूरी है रोज के हिसाब से। रोज अपने कर्मों को भी समेटना है। तो आप पूछेंगे कैसे समेटे? तो सारा जो भी आपने सारे दिन में किया उसको अंत में जो आपके लिए जवाबदार है परमात्मा उसे अर्पण कर दो। अच्छा बुरा, आपको खुशी हुई, आपको नाराजगी हुई, जो भी है सब समेट लो। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है समेटना माना मुझे कल की यात्रा पर क्या ले जाना है और क्या नहीं जरूरी है, ये क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अब समझो किसी ने आपको चार लोगों के बीच में नीचा दिखाया, तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अंदर ही अंदर निर्णय ले लेगा कि अभी देखो मैं क्या करता हूं, तो उसको भूलता नहीं है और मौका ढूंढता रहता है उसको नीचे दिखाने के लिए। और एक व्यक्ति कहता है उसने किया ना, मेरे को थोड़ी कुछ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं इसको क्यों याद रखूं कि इसने मुझे ऐसा बोला। मेरे को जो मदद रूप होती है मैं उसको याद करूं ना, उस चीजों को याद करूं जिससे मैं आगे बढ़ता। जो मुझे नीचे दिखा रहा है और अगर मैं उस प्रभाव में हूं तो मैं भी तो पीछे ही हटूंगा, मुझे पीछे नहीं हटना है। तो जैसे कंप्यूटर में डिलीट सिस्टम होती है ना, ऐसे हमको भी ये सब बातें फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जरूरी नहीं है कल की यात्रा के लिए बिल्कुल। अब आपको, आपके पास चार वस्त्र है पहनने के लिए और आपको कोई कहता है कि नहीं कल के ओकेजन के लिए तो आपको एक नया वस्त्र लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको अंदर स्ट्रांगली आता है कि मुझे जरूर नहीं है, तो आप सामने वाले व्यक्ति के प्रभाव में न आके आप वो बात को डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपको जरूरी नहीं है, है ना। नहीं तो किसी किसी लोगों के अंदर कितना द्वंद चलता है, अरे ये मेरे पास चार है, ये वापस कह रहे नया लेने का, ये क्या है वो क्या है, वो सब कुछ नहीं चलेगा। मतलब छोटी छोटी बातों में भी कई बार हमारे बहुत विचार चलते हैं, हमको रियलाइज नहीं होता है। तो पूर्ण विराम डालने से अपने व्यर्थ को भी हम कंट्रोल करते हैं और आगे के लिए हमारी जो यात्रा है वो ज्यादा क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, सरल हो जाती है। नहीं तो हम उसका बोझ ढोते 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 बहुत भारी हो जाते हैं, फिर शरीर पर उसकी बीमारियां भी आती है। इसलिए समेटने की शक्ति माना, कई ऐसे इस सृष्टि चक्र के सीन है जो आपको आगे अपने साथ नहीं ले जाने हैं, उसको पूर्ण विराम दे दो। कई अपनी आदतें हैं, कई अपने संबंध हैं, बहुत सारी चीजों में पूर्ण विराम लगाने की भी बहुत जरूरत पड़ती है। पूर्ण विराम की आदत ऐसे नहीं हर चीज में आप अभी छोड़ो अभी छोड़ो अभी छोड़ो, नहीं, सबसे किनारा करने लगो उसको पूर्ण विराम नहीं बोलते हैं। जो रियली आपके जिंदगी में जरूर नहीं है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है, उसको आपको डिलीट करना है, तो उसको कहा जाता है समेटने की शक्ति। क्या बोला जाता है जीवन के लिए कि कैसे आए हम इस धरती पर और जाना कैसे है? मतलब ये कहता है कि आपको जो धरती माँ जो भी दे रही है उसका उपयोग करो, लेकिन अंत में ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, तो अंत में जाने के समय यहां ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां जाना है, जिसके पास जाना है, वही स्मृति ऑन होनी चाहिए। कई बार हम यात्रा पर जाते हैं तो कई लोग घर की ही बातें शुरू कर देते हैं, तो फिर दूसरा कहता है अरे छोड़ो ना, अभी हम इतना अच्छे जगह जा रहे हैं, छोड़ो घर की बातें दो तीन दिन के लिए, है कि नहीं। ऐसे ही जब जाना होगा तो हमें एक ही थॉट में जाना होगा कि मैं कहां जा रहा हूं और किसके पास जा रहा हूं, बस। इसको कहते हैं समेटने की शक्ति, है ना। अब एक भाई मृत्यु के शैया पर है और उसको देखने उसको चारे बच्चे आ गए, तो बहुत खुश हो गया कि भाई मुझे लास्ट में मैं सबको देख रहा हूं। लेकिन फिर उसके मन में क्या प्रश्न आया, आप चारों इधर आ गए, दुकान पे कौन है? तो ऐसे हमारे ना बुद्धि रहती है देह के संबंधित, कहीं ना कहीं अटकी हुई। लेकिन जब हम जाएंगे तो एकदम फ्री बर्ड होके जाने का ना, तो वो विचार जब हमारे मन में होगा तो धीरे धीरे हम उसकी तैयारी करेंगे ना। कई लोग ऐसे ही शरीर छोड़ देते, न विल लिखते हैं, न किसी को कुछ बताते हैं, इतने हैरान परेशान हो जाते परिवार वाले। ऐसे करना अच्छा है? भले आपको नहीं बताना है परिवार वालों को, कई चीजें नहीं बताओ, लेकिन लिख के तो रखो। जब आप जाओगे तो वो वकील वो कागज तो देवे उनको, अधूरा अधूरा करके जाते हैं सभी। पीछे वाले कितने परेशान होते हैं, उधार लिया हुआ होता है, ये सब बहुत चढ़ता है जाने के बाद भी। ऐसा नहीं आप फ्री हो गए, आत्मा पर तो बहुत चढ़ता ही है। तो अब पता चला हम आत्मा है, हम अजर अमर अविनाशी है, हम जाएंगे उसके बाद भी वो बोझ हमारे साथ चलेगा। तो इसीलिए ये जागृत अवस्था में हमें समेटना है। तो रोज की आदत होगी ना कि नेगेटिव व्यर्थ, हाँ, ये मुझे समेटना है दूसरी दिन की यात्रा के लिए, तो लास्ट वाला समेटना भी बहुत इजी हो जाएगा। और परिस्थिति को भी हम याद नहीं करते रहेंगे, उसको भी हम समेट लेंगे, तो हल्के होकर जी सकते हैं ना। और आगे भी परिस्थिति आने वाली है, अब इतने परिस्थितियों को इधर स्टोर करेंगे तो कैसे चलेगा। और आत्मा तो लाइट है, प्रकाश स्वरूप, उसका तो कोई वजन ही नहीं होता है, तो भी हम कितना बोझ अनुभव करते हैं लाइफ में, है ना। सॉरी, तो इसीलिए दूसरा पावर जो है वो है पावर टू पैक अप। तो समझे दोनों पावर, एक संकीर्ण करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, और दूसरा, दोनों का फर्क महसूस हुआ? खाली एक ग्रामर का शब्द याद रखेंगे ना, कॉमा मारने का, अर्ध पूर्ण विराम मना संकीर्ण शक्ति, पूर्ण विराम मना समेटने की शक्ति। तो ये दोनों चीजों को हमें अपने जीवन में रोज का रोज यूज करना है। अगर आप शक्ति यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जागृत नहीं है, आप निंद्रा में है। निंद्रा भी अनेक प्रकार की होती है, तो देखना कि आप सोए नहीं रहो, इन शक्तियों को यूज करो, ठीक है। फिर आता है, नहीं वो दूसरा चित्र देखना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो ये जो इसमें पैकअप करना है, तो उसके लिए कौन सी योग्यता आपके अंदर चाहिए? कौन सी योग्यता चाहिए पैकअप करने के लिए? ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा काम आता है कि जब कोई सुना रहा है तो आपकी बुद्धि अन्य विस्तार में ना हो, आपकी बुद्धि जो बोल रहा है उस पे केंद्रित रहे, माना आपकी पूर्ण उपस्थिति हो। शायद शरीर यहां बैठा है लेकिन मन बुद्धि कहीं और है, तो उसको उपस्थिति नहीं कहते हैं। तो अगर आपको समेटना है तो आपको पूर्ण रीति से सामने वाले के लिए या परिस्थिति के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा, वहां समेटने की शक्ति यूज होती है। अब तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। है अपने अंदर, है ना? कहीं कहेंगे मेरे अंदर बहुत है, कहीं कहेंगे नहीं थोड़ी है, कहीं कहेंगे नहीं कभी नहीं यूज हो रही है, ऐसे भी होते हैं लोग, पर है तो सही अपने अंदर। तो परमात्मा की जो शक्ति आती है वो इस उपयोगिता को बढ़ाती है, क्योंकि वो रियलाइज कराता है अरे सहन करना कोई ये नहीं है, कायरता नहीं है, सहन करना तुम्हारी शक्ति है। जितना तुम सहन करोगे उतना जीवन में सफलता पाओगे, और ये हमारे सारे धर्म आत्माओं ने सिद्ध करके बताया। सबसे ज्यादा सहन किसने किया? हमारे धर्म आत्माओं ने। लेकिन आज हम सबसे ज्यादा उनको याद करते हैं, तो यही तो सच्ची सफलता है ना, कि ऐसे कर्म करके जाओ जो आपका यादगार बन जाए। तो सहन करना माना क्या? लेकिन कोई आप पर क्रोध कर रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उबलते रहे, तो क्या ये सहन करना है? हमारे पास कोई कुकर जैसा तो है नहीं सिस्टम, जो सीटी बज जाए सारा प्रेशर निकल जाए, है ना? हमारा तो ऐसे ही होगा, अगर वो व्यक्ति 9 10 11 बार क्रोध करेगा हमारे ऊपर तो फिर वो देख ले क्या होगा, है ना? सारा एक साथ जमा किया हुआ सब धाड़ करके ब्लास्ट होगा, और वो सामने वाला तो एकदम शॉक हो जाएगा कि हैं अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा था, इसको क्या हो गया, है ना? मेरे को तो आदत थी गुस्सा करने की, लेकिन आज इसको क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा ना, उसको भी शॉक लगेगा। तो दबाना अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को सप्रेस करना, दबाते जाना, आप नहीं मानते हो कि ये चीज राइट है, लेकिन आप बार बार सामने वाले को वही करते हुए देखते हो, तो नेचुरली क्या होता है, अंदर तो अपनी भावनाएं दब जाती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी सहन नहीं कर सकते। सहन कौन सा व्यक्ति कर सकेगा? जो हर नई परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार है। अगर आपने कोई भी परिस्थिति के लिए कहा कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, जैसे कई लोग मृत्यु के लिए डरते हैं ना, पापा मेरे साथ तो कभी नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट मेरे साथ तो कभी नहीं होना चाहिए, कैंसर मेरे को कभी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जो व्यक्ति करते हैं ना वो कभी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया सृष्टि माना परिवर्तन, और उसी परिवर्तन का नाम है परिस्थिति। तो परिस्थिति भी नेचुरल है और आप स्वीकार नहीं कर रहे तो क्या होगा? तो सहन करना माना हर नई परिस्थिति को स्वीकार करना, हर नए संबंध को भी स्वीकार करना, कोई भी कंडीशन के बिना। जब आपकी मन और बुद्धि की स्थिति ऐसी होती है तो आप सहज सहन कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक सहन कर सकते हैं, आपको अपने में कभी कमी महसूस नहीं होगी। शरीर थोड़ा थक सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं थकेगी, माना विल पावर स्ट्रांग होगा। फिर भी कहीं होता है, कहीं बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, अपंग होते हैं या अंधे होते हैं या जो भी, तो माँ बाप दो प्रकार की प्रक्रिया देते हैं, एक जो अंदर ही अंदर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और एक जो है वो पूरे जीवन भर उसकी सेवा करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। कई माता पिता तो बहुत गर्व महसूस करते हैं ऐसे बच्चे पर। तो ये अलग अलग वेज है ना। तो सहन शक्ति माना जिसने स्वीकार किया उसने उसमें अपना पार्ट अच्छी तरह से निभाया। जो भी परिस्थिति थी। अब अपने को तो नहीं पता ना कि बच्चे को आंख क्यों नहीं मिली, बच्चा जन्म से अपंग क्यों है, बच्चे को तीन हाथ क्यों जन्म से, हमको तो नहीं पता ना, तो क्या दोष है? हम थोड़ी दोष ढूंढने बैठेंगे, स्वीकार ही करना होगा। मंद बुद्धि के बच्चे कितने पैदा होते, उसको और ही कई माँ बाप बहुत प्यार देते तो इस, और कहीं तो फेंक भी देते हैं, कहां से कहां का कर्म होता है देखो। तो सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है हमारे जीवन में, और वो हमको सिखाती है, मैच्योर बनाती है जीवन को, कैसे हमें सामना करके आगे बढ़ना है, या कैसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाला अपना जीवन बनाना है, वो हमें सहन शक्ति सिखाता है। तो आज से हम मना न करें, बराबर, जितना हो सके, और मेडिटेशन करेंगे तब वो रिचार्ज होगा। अभी एकदम आप परिस्थिति को मना नहीं करेंगे लेकिन पार नहीं कर पाए तो फिर उदास हो जाएंगे। मेडिटेशन से पहले अपने को चार्ज करना है, फिर आगे ये उपयोग करते रहेंगे तो आपको उसमें भी सफलता महसूस होगी, और आपका नुकसान कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जैसे एक पेड़ होता है, आम से लदा लद अभी भरा हुआ होता है, तो देखते हम क्या सोचते, तोड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी मारते हैं या पत्थर मारते हैं, हो गई नेगेटिव सिचुएशन आम के लिए। तो पर आम का पेड़ क्या करता है, आम देता है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि जिसको मेरे फल चाहिए वो ऐसे ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ ना, जिसके जीवन में फल है तो उसको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो पत्थर मारेंगे या लकड़ी मारेंगे, क्योंकि उसके खुद के जीवन में बहुत फल है। तो अगर वो फल राई जीवन वाला अगर सोचता है कि वो आएंगे क्योंकि उनको मेरे से चाहिए, तो वो सहन करता है, स्वीकार करता है। पर अगर वो स्वार्थी है खुद और कहता आधे फल तो मेरे लिए है, मैं क्यों दूं, जो आम का पेड़ या प्रकृति का कोई भी जीव ऐसा नहीं करता है, केवल मनुष्य सीख गया है। तो इसीलिए मनुष्य को देख के प्राणी भी सीख गए हैं, क्या युद्ध करते हैं एक ही चीज के लिए दोनों प्राणी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये किसके कहां से सीखा, मनुष्य से। तो इसीलिए जो सहन शक्ति वाला होता है उसका देने का हाथ ज्यादा होता है, लेने का मांगने का हाथ कम होता है। तो आज इसीलिए ऐसे आत्माएं कम है, इसका मतलब सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अभी अगर दंगा फसाद होता है तो कोई नई बात लगेगी नहीं, क्योंकि सहन शक्ति की कमी है, तो क्या होगा, वायलेंस होगा, हिंसा होगी। तो ये सारी अपनी आंतरिक शक्तियों की कमी है जिससे बाहर की परिस्थितियां आ रही है, वेरी मच कनेक्टेड। अब देखते हैं सहन शक्ति के बाद पावर टू एडजस्ट या एकोमोडेट, उसका अर्थ है समाना, समाने की शक्ति, समेटना अलग था, समाने की शक्ति। ठीक है, अब नदियां है वो क्या करती है, सब जगह बहती है और जब शहरों तक पहुंचती है तो शहर का सारा कचरा हम नदी में डालते हैं, फिर वो नदी एंड में कहां जाती है, सागर में, और वो क्या करती है, अपना सारा कचरा सागर में डालती है। सागर कभी ना बोलता है नहीं मैं तो गंगा का ही कचरा लूंगा और किसी नदी का नहीं, उसको तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो बेहद है, गहरा है, विशाल है, तो वो सब ले लेता है अपने अंदर, समा लेता है, और फिर उसको आता है, उसके आगे आता है क्या करना है। तो अगर हल्का होता है ना तो अपनी लहर से वो किनारे पर फेंक देगा, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो वहां के जीवों को काम आती है तो वो एकदम गहराई में ले जाएगा, वहां वो जीवों को काम आ जाती है। तो उसमें ये अकल भी होती है, जिसकी बुद्धि विशाल है, गहरी है, गंभीरता है उसके अंदर, तो उसको पता है कि ये चलो आया है, लेकिन जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ अपने अंदर बिठाना है। तो वो अच्छे शुभ विचार करके कई चीजों को निकाल ही देता है, चेंज कर देता है अपना थॉट प्रोसेस। तो जो नेगेटिव सिचुएशन आई है उसको धीरे धीरे पॉजिटिव कर देता है, और बाकी जो उसमें से सीखना है वो सीख के उसके जीवन में उपयोग में ले लेता है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति बिना सिखाए तो जाती नहीं है। तो जो वेस्ट है उसको हमको निकाल देना है, और जो सीखने वाली चीज है ग्रहण करनी है। लेकिन उस समय अगर हम परिस्थिति के प्रभाव में आ गए तो हम ये नहीं कर पाते, तो समाने की शक्ति यूज नहीं कर सकते। तो आप समझ लो कि जितनी परिस्थिति बाहर है ना, उतनी शक्ति अपने अंदर है, और हम कितनी आत्माएं हैं दुनिया में। अगर सभी जागृत होकर के अपनी शक्तियों को यूज करें तो कोई परिस्थिति हम पर हावी नहीं होंगी। लेकिन अभी का लॉ है कि जो कर सकता है वो शुरू करे, जो अपने को जागृत समझता है वो इन शक्तियों को शिव बाबा से ग्रहण करके यूज करना शुरू करे, दूसरों का इंतजार न करे। समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए जितना भी समय, 12 बजने में 2 मिनट जितना भी समय अपने पास है, अपना भी भरोसा नहीं, तो हमको हर दिन जागृत अवस्था में रहना है। जितनी बाहर परिस्थिति है उतनी मुझ आत्मा में शक्तियों का स्टॉक है, और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हर परिस्थिति के लिए मुझे अपनी शक्तियों को यूज करना है। नहीं यूज कर रही हूं माना अज्ञान में चल रही हूं, अज्ञानी हूं, तो अज्ञानी रहना अच्छा नहीं लगता ना। कोई आपको कहे आप अज्ञानी हो, कितना खराब लगता है। हम ज्ञानी है क्योंकि हमारे अंदर शक्तियां है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। तो ये है एकोमोडेट करना, माना समाना, ठीक है। उसके बाद और उसके लिए क्या चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, जैसे नदियों में होता है, हाँ वो सागर तक कैसे पहुंचती है, बीच में पहाड़ आते हैं, बीच में खाई आती है, तो भी पहाड़ कैसे सागर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी क्या योग्यता है बताओ, और वो अपना रास्ता निकाल लेती है, बना लेती है। उसको कहते हैं अपने आप को मोल्ड करना। अब परिस्थिति आई है तो ऐसा नहीं कि मैं अपना सिर उस परिस्थिति से भटकाती रहूं, लेकिन मैं अपना एक रास्ता ढूंढ लूंगी वहां से जाने के लिए। मोल्ड होना, फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना अपनी योग्यता में, नहीं तो कहीं बहुत कड़क होते हैं, जिद पे आ जाएंगे। जिद कोई पॉजिटिव क्वालिटी थोड़ी है, वो तो और दुश्मन पैदा करेगी और परिस्थिति आपको हैरान करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आप जिद्दी हो गए हो। लचीलापन होगा तो आप शांति से अपना रास्ता बना दोगे, है ना, तो उससे कम दुश्मन बनेंगे। तो इस प्रकार से पावर टू एकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट, या समाने की शक्ति। लेकिन फिर भी ना, भले आपके अंदर भरपूर सहन शक्ति है, आपके अंदर भरपूर समाने की शक्ति है, लेकिन अगर आपके अंदर परख शक्ति नहीं है ना, तो आप गलत संग में, गलत समय तक, गलत जगह पर आप अपना शक्ति यूज करती रहेंगे, लेकिन अंत में आपकी हार होगी। तो इतना भी नहीं ऐसी परिस्थितियों में सहन या समाना है जो आपकी हार हो जाए, आप ही डूब जाओ उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंढक होता है, तो मेंढक ना कोई भी वातावरण के साथ अपने को एडजस्ट कर लेता है, इसलिए जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति ने ट्राई किया कि एक मेंढक को एक पानी के वो केवी में डाला और फिर उसको गैस पे रख के एकदम धीरे से गैस चालू किया। तो जैसे वो धीरे से गर्म होता है ना पानी, तो मेंढक ने भी अपनी अपनी आप को फ्लेक्सिबल करके वो टेम्परेचर के साथ अपने को एडजस्ट करना शुरू कर दिया और फिर भी तैरता रहा, है ना। फिर एकदम जब पानी बॉईल होने लगा तब उसको रियलाइज हुआ कि बाप रे, मेरे को यहां नहीं रह सकता हूं। फिर वो जंप करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक इतना एडजस्ट कर लेता है, इतना एडजस्ट कर लेता है कि वो फिर गर्म पानी में ही मर जाता है। ऐसे ही अगर हम परख नहीं सकते ना, तो अपनी सहन शक्ति, समाने की शक्ति कोई काम की नहीं, है ना। परखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर मुझे अपनी शक्ति को यूज करना है, या कोई और शक्ति को यूज करना है, या अभी मुझे साइलेंट रहना है, अभी मुझे साक्षी रहना है, बस ये परखना पड़ेगा, नहीं तो हार हो सकती है। अभी जैसे जवहरी होता है, तो जवहरी जो है परख सकता है, हीरो का व्यापारी, कि इतने 10 हीरे पड़े हैं तो हर एक हीरा कैसा है और उसका भाव क्या होगा। हम उसकी जगह परख पाएंगे? नहीं ना, हमारे लिए तो सब पत्थर के समान ही है, हमको पता ही नहीं है रियल कौन सा है और झूठा कौन सा है। तो इसीलिए जवहरी को ज्ञान है, उसको उससे अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, अभ्यास से उसको अभी अनुभव हो गया है कि कौन सा हीरा किस क्वालिटी का है और कौन सा भाव का है। ऐसे ही हम भी जब समझ को अपनी बढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं जवहरी को क्या करना पड़ता है, रोज अपनी स्टडी आगे बढ़ानी होती है। जैसे होम्योपैथी डॉक्टर, वो अपने पास किताब रखता ही है और जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसके बारे में पढ़ता है साइंस लेकर के, और फिर जब वो पेशेंट चला जाएगा तो भी रात को उसकी स्टडी करेगा ताकि दूसरे दिन उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो दवाई दी वो एक्यूरेट थी, है कि नहीं। तो इसीलिए अभ्यास, उसके पहले अध्ययन, ज्ञान का मंथन, ज्ञान का वांचन, पढ़ाई। अभी तो कितना अच्छा हो गया ना जो YouTube में आ जाता है, आपको जब भी टाइम मिले सुबह सुबह बेस्ट है, तो आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ भी अच्छा सुनो, सुन के उस पर मंथन करो। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुद्धि को देनी, नहीं आजकल गेम्स निकली है आपके मस्तिष्क के लिए, गेम बहुत अच्छी है आपकी आयु नहीं ज्यादा, आपको बुढ़ापा लगे, ये गेम अच्छी है, दुनिया तो कुछ भी करती रहती है। लेकिन वास्तव में बुद्धि को, मन को अच्छे विचारों का भोजन चाहिए। तो अच्छी किताबें अगर आप पढ़ते हो, उस पर मनन करते हो, धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि तैयार होने लगती है और आप परिस्थितियों को भी परखना आपको सहज हो जाता है। विकास हुआ ना इधर, तो आपको परखना सहज होगा। एक ही रीत है परखने की, ऐसे कोई जादू से परखने की शक्ति नहीं आती है। अगर किसी ने कोई जन्म में किया होगा वो अभ्यास, तो दूसरे जन्म में उसकी परख शक्ति बचपन से ही तीव्र होगी, ठीक है ना। लेकिन तुलना थोड़ी करनी है, हमको अपनी स्टडी करनी है, अपनी हमारे अंदर कितनी परख शक्ति है, बाबा से पावर लेना है और अध्ययन करना है रोज एक ड्रिल की तरह, कि विदाउट फेल मुझे अपने मन बुद्धि को कोई तो विचारों का भोजन देना है और उसको एक्टिव बनाना है। बाद में जो भी कर्म करेंगे वो, पर पहले मुझे यहां करना है, यहां जिसके लिए मुझे हाथ नहीं चलाने, पैर नहीं चलाने, समझा। समझो आपका वॉकिंग का टाइम है, खेतों में जाने का टाइम है, या जो भी करते आप सुबह, तो उसके साथ साथ करो, वो भी कर सकते हैं। पढ़ नहीं पाएंगे उस समय तो ऑडियो सुनो, माना वो टाइम आपको अध्ययन के लिए यूज करना है और फिर उस पर मनन चिंतन करना, ये तो और जरूरी है। मैं सोचूं उसके बारे में, ताकि मैं जो दिन में इतने व्यर्थ सिचुएशंस आती है उस पर इतना व्यर्थ सोचता हूं, वो मुझे अटकाएगा और विवेक कहेगा कि नहीं, अभी इसमें टाइम वेस्ट मत करो। नहीं तो कोई अटकाता ही नहीं है, ये चलता रहता है, चलता रहता है सारा दिन, कहीं भी कैसे भी कुछ भी। इसीलिए परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद कौन सी शक्ति है? तो आपने कौन सी योग्यता देखी परखने की शक्ति के लिए? अध्ययन और मनन चिंतन। जितना अपने विवेक को, ज्ञान का विकास करेंगे, उतना आपकी परख शक्ति बढ़ेगी। आपके खुद के धंधे में भी, खुद के कार्य में भी, जितना आप उसके नॉलेज को बढ़ाएंगे, जितना उसका उसके ऊपर सोचेंगे, उतना आपके कार्य में भी कार्यकुशलता बढ़ती जाएगी। वैसे ही रोज की दिनचर्या में भी। तो ये ज्ञान भी ये हमें काम आता है। इसीलिए ज्ञान कोई कथा नहीं है, जैसे रामायण है या महाभारत है, कोई कथा नहीं है। ये लिटरल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आपको सुनना है और उस पर मनन चिंतन करना है और अपने निजी जीवन में यूज करना है। खाली एक बात बहुत जल्दी हो जाती है इस ज्ञान में, कि हम दूसरों को ज्ञान देना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, अपने ज्ञानी समझने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे अभी तो मैंने इसका अनुभव भी नहीं किया, मैं क्या सुना रहा हूं। फिर भी अगर कोई सामने से पूछता है तो थोड़ा सुनाओ, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बात। लेकिन जो नया नया है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, खाली सुनाते जाएंगे क्या होगा? पहले अपने ऊपर तो काम करो। और अच्छा सुनाया बोलते हैं तो अहंकार आ जाता है। ये ज्ञानी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज अध्ययन में रहने से एक डिसिप्लिन रहता है। फिर है पावर टू जज, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। ये तो हमको रोज यूज करना पड़ता है, नहीं? कौन यहां बोलेगा नहीं, हमको कुछ भी डिसाइड करना नहीं पड़ता है, नहीं? करना पड़ता है। अगर कोई और भी डिसाइड करता है ना आपके लिए, तो भी कार्य करने से पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। समझो कि आपके बड़ों ने कहा ये करना है, और मैं अंदर डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूं कि मुझे करना है कि नहीं करना है, तो कैसी होगी मनस्थिति? सही नहीं होगी ना। अगर बड़ों ने कहा है तो मैं भी तो अपने आप को प्रिपेयर करूं, मैं भी तो डिसीजन लूंगी कि जी मुझे करना है, तो उतना पावर आएगा ना कर्मों में। और आजकल ऑफिस में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में ऊपर वाले तो बता देते हैं कि करना है, नीचे वाले को नहीं करना है तो भी मजबूरी से करना पड़ता है, तो उसमें कितनी ताकत फील होगी। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो वो तो आराम से हाथ खड़ा कर देता है, नो बॉस ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेवार खाली बॉस को समझता है, क्योंकि निर्णय किसका था? बॉस का था। जब तक आप खुद निर्णय नहीं लेंगे, आपको खुद अंदर जवाबदारी महसूस नहीं होगी। समझा? खाली बोला हुआ सुन रहे बस, कहा हुआ कर रहे बस, प्रॉब्लम आएगी आप नहीं फेस कर पाएंगे, क्योंकि आपका डिसीजन नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भी आपके अंदर वो हिम्मत बनी रहेगी, आपके अंदर वो दृढ़ता बनी रहेगी, जिससे आप परिस्थिति को पार करके भी वो कार्य पूरा करेंगे। समझा? नहीं तो वो कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि आपका निर्णय है ही नहीं। और कई लोग तो निर्णय कैसे लेते हैं, निर्णय में दिखाते वो कांटा होता है ना, वजन का कांटा। तो सब्जी वाले होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर मैग्नेट रख देते, तो इसीलिए वजन कम देंगे और पैसा तो उतने का उतना लेंगे है? और फिर कई कस्टमर्स बहुत एकदम एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो कहते हैं ए बराबर करो, ये देखो क्या किया आपने, ये कांटा ठीक नहीं आया है, अब देखो कांटा ठीक नहीं है आपका, व्हाटएवर मना करते हैं जान करके कि भी क्या कर सकता है व्यक्ति। तो ऐसे हम रोज भी करते हैं, हमारे पास सबके पास वजन का कांटा है हर निर्णय के लिए। और कोई बार कोई स्वार्थ का मैग्नेट रखता है, कोई मोह का मैग्नेट रखता है, कोई अहंकार का मैग्नेट रखता है, हैं? कोई मनमत का मैग्नेट रखता है, और फिर वजन करते, तो वजन कैसे राइट होगा? वजन भी तो हमारा वैसा होना चाहिए ना अगर निर्णय लेना है तो. तो अगर विकारों से कोई भी बात का निर्णय लिया तो उसमें सही सफलता नहीं, थोड़े समय के लिए अच्छा मिलेगा लेकिन लंबे समय तक वो आपको सुख नहीं दे पाएगा. ऐसा निर्णय कभी हुआ है लाइफ में आपसे, हुआ है जो लंबे समय तक आपको सुख नहीं दे पाया? सोचो, होगा हर एक के लाइफ में ऐसा निर्णय जरूर होगा जो लंबे समय तक आपको सुख नहीं दे सका. तो फिर ढूंढो कि वो मैंने किससे वजन किया था, तो आपको पता चलेगा कि वजन ही सही नहीं था तो कैसे होगा, राइट रिजल्ट कैसे आएगी, है ना. तो इसीलिए निर्णय शक्ति के साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई है? जवाबदारी. जवाबदारी, निर्णय के साथ जवाबदारी है तो सक्सेस है, पर निर्णय के साथ जवाबदारी की फीलिंग नहीं है तो आपको हमेशा सक्सेस मिले या थोड़े समय के लिए मिलेगा लेकिन लंबे समय के लिए नहीं. आगे है पावर टू फेस या सामना करने की शक्ति. अब जहां अपने संबंधियों की बात आती है वहां हम क्या करते हैं? हर घर में आजकल क्या चल रहा है? छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, आवाज सुनाई देता है ना घरों से. वो क्यों होता है? क्योंकि आत्माओं के साथ हमें ज्यादा सहन शक्ति का उपयोग करना है, उसकी जगह हम सामना करने की शक्ति करते हैं उपयोग, गलत शक्ति का उपयोग करते हैं, तब झगड़ा होता है. दो ताली बजेगी तभी तो आवाज होगा ना. और जब परिस्थिति है, समझो घर में चोरी हो रही है या कुछ ऐसा, तो उस समय वो आत्मा का नहीं, परिस्थिति है. वो आपको अपने घर में चोरी करने से रोकना है, आपको उस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो परिस्थिति हो गई ना. तो उस परिस्थिति में आपको सामना करना पड़ता है, सहन नहीं करना होता है. ठीक है, कई डर जाते हैं लेकिन वहां सामना करना होता है क्योंकि वो परिस्थिति है. ऐसे कितनी परिस्थितियां जीवन में आती है और संबंधों के बीच में आत्माएं हैं जीवंत. जैसे मैं आत्मा हूं तो मेरे फैमिली के सारे मेंबर कौन है? आत्मा है ना, चैतन्य वो भी. तो जितना हो सके सहन शक्ति का शस्त्र यूज करेंगे तो संबंधों में मधुरता रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है. ऐसा नहीं है कि दब के रहना है. कई लोग धीरे धीरे ना बहुत दबाव फील करते हैं क्योंकि वो अपनी रीति से शक्ति यूज नहीं कर रहे हैं, खाली दबते जा रहे हैं. याद ही नहीं ना, ज्ञान ही नहीं कि शक्तियां है जो हमको यूज करनी है. इसीलिए तो क्या समझा आपने, सामना करने की शक्ति कहां यूज करनी है? जहां परिस्थितियां है. और सहन करने की शक्ति, समझने की शक्ति कहां यूज करनी है? जहां आत्माएं हैं. ठीक है ना, संबंधों में सुधार लाना है तो आपको सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति यूज करना पड़ेगा. लेकिन जहां परिस्थिति आती है वहां आपको परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने और लेने की शक्ति यूज करना पड़ेगा. तो हर चीजों के लिए अलग अलग होता है. तो सामना करने के लिए जो बाबा से शक्ति आती है तो उसमें हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए और हमारे अंदर हिम्मत चाहिए. एक स्लोगन बहुत पुराना है, आपकी हिम्मत होगी तो खुदा की मदद होगी. ये बहुत पुराना है. तो हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा की मदद मिलती है. किसमें? परिस्थितियों में. क्योंकि हो सकता है आप ऐसी परिस्थितियों के अनुभवी नहीं होंगे तो वो आपको मदद करता है. आप खाली हिम्मत रखो, स्वीकार करो, तो आप कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते. करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. क्या होगा परिस्थिति का सामना करने से? अनुभवी बनेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो क्या देना पड़ता है? परीक्षा, है ना? परीक्षा में पास होंगे तो दूसरे क्लास में जाएंगे। ऐसे जीवन की ये परीक्षाएं हैं, भगवान नहीं लेता है, ये सब अपने साथ ही जुड़ा होता है, अपना ड्रामा है ना। तो ये सारे कारण अपने साथ ही जुड़े होते हैं और वो कारण फिर परिस्थिति के रूप से हमारे सामने आते हैं। तो इसमें भगवान का कोई पार्ट नहीं है। हाँ, जब हम भगवान के बनते हैं ना, तो भगवान को ये देखना है कि मेरा बच्चा कहां तक मजबूत बना है, कहां तक जो सिखाया वो जीवन में लाया, तब वो एक आध बार दो बार कुछ ऐसा टेस्ट रखता है ताकि उससे भी पता चले कि बच्चा कहां तक प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन बहुत प्यार होता है उसमें, परमात्मा का बहुत प्यार होता है। किसी को उल्लू बनाना, किसी को दगा देना, किसी को बुली करना, ऐसा नहीं होता है परमात्मा का, बहुत प्यार होता है। और मनुष्य जब परीक्षा लेती है तो अलग ही भाव होता है। तो इसके लिए जो परिस्थितियां आती है उसका सामना करना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन हम सामना ना कैसे करते हैं मालूम है? नई परिस्थिति को ना पुराना जवाब देते हैं। नई परिस्थिति को कौन सा जवाब चाहिए? नया जवाब चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी मन बुद्धि और संस्कार का जो चक्र फंस गया है ना, तो हम मन बुद्धि को काम ही नहीं देते नई परिस्थिति में। सीधा संस्कार ही बोलता है, पहले किया हुआ जो संस्कार बनता है ना, वो संस्कार कहता है करो ऐसा, करो ऐसा, तुमने पहले भी किया है। पुराना जवाब गया और मन बुद्धि ने कोई काम नहीं किया परिस्थिति को समझने के लिए। तो जब तक आप नई परिस्थिति को पुराना जवाब देते रहेंगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, आप वहीं के वहीं खड़े हो। जैसे कोई बोट में बैठा है, चला रहा है, लेकिन वास्तव में एंकर तो निकाला ही नहीं, तो बोट वहीं का वही है किनारे पर और वो ऐसे ऐसे चला रहा है, क्या फायदा है ना। तो ऐसे ही हमको हर नई परिस्थिति में अभी फिर से मन बुद्धि का उपयोग करना है, क्योंकि वो शक्ति अभी दे रहा है ना बाबा। तो उस मन बुद्धि को जो शक्ति मिल रही है उसको यूज करो, हर समय संस्कार पर आधारित नहीं रहो। तो नए नए संस्कार बनते जाएंगे जो हमें सत्युग में त्रेता में काम आएंगे, ये पुराने संस्कार तो वैसे भी नहीं साथ में चलेंगे, क्योंकि उसमें विकार की बदबू है ना, तो वो नहीं चलेंगे। आपको नए संस्कार बनाने ही पड़ेंगे। तो नए संस्कार बनाने के लिए मन बुद्धि को नई रीति से यूज करना पड़ेगा हर परिस्थिति में। ये सब नई पढ़ाई है, नई रीति से हमको जीवन में आगे बढ़ने की ये विधियां बताते हैं बाबा। और जब आप फेस करते हो, आपने निर्णय लिया, आपने सामना भी किया, लेकिन क्या आप अकेले कर सकते हो हमेशा? जो समझता है मेरे बिना नहीं होता है, उसमें क्या होता है? अहंकार होता है, नेगेटिविटी। और जो अपने टीम को आगे रखता है, सबको कहता है नहीं मेरी टीम को थैंक यू बोलो, उन्होंने कितना योगदान दिया तभी ये सारा हो पाया, तो आपको उस व्यक्ति के लिए गर्व महसूस होता है कि उसने अपने सारे लोगों को आगे बढ़ाया, है कि नहीं? हमारी संस्था में ये बहुत होता है। हमारी दादियां थी तभी तो बहुत एक्सपीरियंस एकदम रियल वो था कि दादियां हमेशा हमको आगे रखती थी। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा जो है उन्होंने भी दादियों को बहुत आगे रखा, कभी अपने को आगे नहीं। हाँ, कुछ भी करना होता था, कुछ भी सीखना होता था तो ब्रह्मा बाबा आगे खड़े रहते थे, लेकिन जहां पर आगे बढ़ाने की बात होती थी तो दादियों को आगे रखते थे। ऐसे कभी नहीं बोला कि मैं स्थापक हूं, मैं ये हूं तो मेरे से ही होगा, मेरे बिना तो ये कुछ नहीं कर सकती सब, कभी नहीं। उनको बोलते थे आप तो हमारी देवियां हो, इतना सम्मान दे करके उनको आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से मतलब समझते थे ना कि ये परमात्मा का कार्य है, तो खाली मेरे से थोड़ी होगा, उसमें सबकी अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठेगा। तो ये गोवर्धन पर्वत है, अभी कलयुगी पर्वत, इसको उठाना है, तूफान से बचना है, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? उंगली लगानी होगी। माना अपनी निजी परिवर्तन का संकल्प हमको यहां से लेके जाना है कि सबसे पहले परिवर्तन कौन होगा? मैं। कौन मैं? आत्मा। शरीर नहीं, मैं आत्मा। समझा? मुझे देख और करेंगे। ऐसे नहीं कि अरे ये नहीं हो सकता, मेरे से तो कभी नहीं होगा। ये क्या होगा? अपने को अकेला समझना, अपने को ही जिम्मेवार समझना, फिर ऐसा हो जाता है। अरे जो लेती है जिम्मेवारी उसको सहयोग आपे ही मिल जाता है ना। और जिम्मेवारी लेने वाले ना दो चीजों से काम लेते हैं, लव और लॉ, प्रेम और नियम मर्यादाएं। अगर वो नियम मर्यादाओं को बहुत आगे ले जाते हैं और प्रेम को पीछे रखते हैं तो सुनने वाले साथ में रहना सुनते नहीं है, डिस्टर्ब ही रहते हैं। लेकिन अगर वो दोनों के बैलेंस से चलता है तो साथ में रहने वाले सदा साथ देते हैं, सदा सहयोग देते हैं। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपने में, अपने पास पूरे विश्व में भी है कि हरेक ने टीम वर्क बहुत अच्छा किया। एक बार एक मालिक था कंपनी का, और उसकी आदत थी कि हरेक को जिम्मेवारी देने की, हरेक को जिम्मेवार अनुभव कराने की कि ये फैक्ट्री मेरी केवल नहीं है, जो भी यहाँ काम करता है हम सबकी है और हम सबकी एक एक जिम्मेवारी यहाँ पर है करके। और बहुत प्यार से उस प्रकार की पालना देते रहे। और इसके लिए क्या करते थे कि सिस्टम में पोस्ट बदलते रहते थे ताकि हर एक व्यक्ति हर एक चीज को समझ सके और सीख सके, है ना। तो थोड़े थोड़े समय पर शिफ्टिंग होती थी, कभी निकालता नहीं था किसी को भी, लेकिन शिफ्टिंग होती थी। तो क्या हुआ कि एक बार रायट्स हो गए शहर में और कर्फ्यू लग गया, तो जो उधर फैक्ट्री में थे उस दिन उनको फैक्ट्री में ही रहना पड़ा, और जो मालिक था वो गया था बाहर तो वो नहीं था उधर। अभी कर्फ्यू चला 8 दिन के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में बाकी सब फैक्ट्री बंद हो गई लेकिन ये फैक्ट्री चालू थी। क्यों? क्योंकि हरेक को हरेक प्रकार की जिम्मेवारी सिखाई थी, और ये भी पाठ सिखाया था कि हम ही है, हम सभी है, परिवार है इस फैक्ट्री के, हम सब सेवादारी है। तो इसीलिए वो लोग ने अपने आप पोजीशन ले ली समझ के कि अब से मैं ये रोल करूंगा, तुम ये रोल करना, तुम वो करना, और सब आपस में मिलके उस फैक्ट्री को फिर भी चलाते रहे 8 दिन, बंद नहीं होने दिया। और बॉस ने कुछ नहीं बोला है, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप। रियल स्टोरी है। तो हो सकता है ना, अगर एक कर सकता है तो कर सकते हैं। लेकिन ये भाव होना चाहिए, ये एटीट्यूड, ये वृत्ति अपने अंदर होनी चाहिए जो हम सहयोग दे भी सके और सहयोग समय पर ले भी सके। आपने समझो 10 जन को सहयोग दिया, आपकी आई वेल में वो 10 जन नहीं भी आएंगे लेकिन और कोई आपको सहयोग देगा। ये प्रकृति का नियम है, और कोई देगा लेकिन मिलेगा जरूर आपको। आप कभी खाली हाथ नहीं रह सकते। हाँ, तो कभी ये नहीं समझो कि मैं ही घर का मालिक हूं, मैं ही इस फैक्ट्री का ओनर हूं, मैं एक दिन नहीं आता ना सारा काम चौपट हो जाता है। दैट मीन्स वो फेल ही है, वो पास है ही नहीं, है ना। उसको जैसे हमारी दादी बोलती थी, किसी ने बोला मीडिया वालों ने कि आपके ये जो सारे फॉलोअर्स है वो आपका कैसे आप चलाते हो, वो सबसे पहले तो हमारे पास फॉलोअर्स ही नहीं है, हमारे पास कोई फॉलोअर नहीं है। क्योंकि यहां लीडर बनते हैं, लीडर जितने भी आते हैं ना यहां लीडर बनते हैं। लीडर किसके? अब पहले अपने जीवन के और फिर इस यज्ञ के। एक यज्ञ है ना ये परमात्मा का, है ना। 130 देशों में 4,500 5,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र का ये यज्ञ है जो परमात्मा ने स्थापित किया है। तो उसके हम सब मालिक है और सब सेवादारी है। तो हम लोग फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, अपने अपने जीवन का लीडर क्रिएट करते हैं, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही चाहता है कि हर एक आत्मा अपने जीवन की लीडर है। वो भूल गई है और दास बन गई है। दास जो बनता है वो सदा उदास रहता है, जो लीडर बनता है वो औरों को भी लीडर बनाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सहयोग देना भी है और सहयोग लेना भी है, टीम का, परिवार का, एक एक सदस्य का उतना ही महत्व है। अभी भी अगर आपने कोई भी सदस्य के का महत्व नहीं समझा और कहा ये तो कोई भी काम का नहीं है, ये तो मेरी मदद ही नहीं करता है, ये तो बस निठल्ला है और ये तो बस बाहर जाके बस खेलने कूदने को ही समझता है सब, ऐसे अगर विचार है तो निकाल देना। जब आपकी वृत्ति बदलेगी तो आपके सदस्यों की वृत्ति भी बदलेगी। लेकिन आप ही कमजोर होते जा रहे हो, इसके एक एक कर्म देख के आप और कमजोर हो रहे हो, तो गलत बात हो गई ना। आप तो लीडर हो अपने लाइफ के, आप कमजोर हो ही नहीं सकते। यहां तो ऐसा हुआ है ना कि सदस्य परिवार का छोटे से छोटा सदस्य ने अपने पूरे परिवार को इधर लाए हैं सेंटर पर, तो लीडर कौन बना? छोटा ना। ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट बना, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, वो प्रोजेक्ट एक 11 साल के बच्चे ने पहला संकल्प दिया और उसका संकल्प जब बड़ों को बताया तो एक पूरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन गया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। सुना? तो कुछ भी हो सकता है, सही निर्णय कहां से भी आ सकता है। इसीलिए मन को खुला रखना, संगठन में विश्वास रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखना, तो आप सहयोग जितना देंगे उतना आपको सहयोग मिलेगा भी। तो ये हमारे अंदर ही, आत्मा के अंदर ये शक्तियां हैं। आपको कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है इस शक्ति के लिए। इवन मंदिर में आपने देखा होगा एक मूर्ति है मां की, उसे अंबा मां, दुर्गा मां ऐसे शब्द देते हैं ना, उनके हाथ कितने दिखाते? अच्छा, आठ हाथ। अच्छा, कोई को आठ हाथ होते, यहां तो तीन हाथ होते तो ऑपरेशन करा देते, कहती ये तो बहुत एबनॉर्मल है, विचित्र है। और आठ हाथ वाली मां की तो पूजन होती है, हा? तो उसका क्या कारण है? वो आठ हाथ में क्या दिखाते हैं? तो आठ हाथ किस लिए दिखाते हैं और आठ हाथ में क्या दिखाते हैं? शस्त्र। और उनका फेस कैसा होता है? बड़ा निर्मल, प्रेम वाला, एकदम दयालु, कृपालु, और हाथ में शस्त्र। कॉम्बिनेशन कुछ सही नहीं है, है ना? तो इसीलिए वो शस्त्र और नहीं, यही है अपनी आठ शक्तियां। और जो परिपूर्ण रीति से यूज करते हैं उसको देवी कहा जाता है, देव कहा जाता है। तो अभी हम देवी देव नहीं कह सकते ना अपने आप को, क्योंकि हम परिपूर्ण रीति से ये आठ शक्तियों को यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम उनके पास जाते हैं मंदिर में वहां से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन अभी क्या रह गया है, क्योंकि हमारी तो विस्मृति हो गई है, इसलिए हम देवी से ही मांगते रहते, भाई हमको शक्ति देना, हमारी रक्षा करना। ये सोचो कितनी कमजोरी आ गई है। और वो देवी का प्रतिमूर्ति क्यों बनाई है, क्यों बनाई है? जब भी हम उसके सामने जाए तो हमको याद आए कि मुझे आत्मा में भी ये आठ शक्तियां हैं और मुझे इसको यूज करना है। समझा? तो अभी जब भी जाएंगे दुर्गा माँ के मंदिर में, अंबा माँ के मंदिर में, अंबाजी जाएंगे ना कई लोग, तो क्या देखेंगे वहां? अपने स्वरूप को देखना कि ये मेरा परिपूर्ण स्वरूप है। जब मैं सारी शक्तियों को परिपूर्ण रूप से यूज कर रही होंगी तब मेरा ये दैवी स्वरूप होगा, पूजनीय स्वरूप होगा, महिमा योग्य स्वरूप होगा, जो अभी नहीं है, मुझे बनना है। और फिर से उस स्वरूप को अपने में ढाल के बाहर आना, उस स्वरूप को अपने में ढाल के बाहर आना एक बार करना, नई चीज है। अभी जो करते आए हो वो तो करते आए हो, वो भी गलत नहीं था, ये भी गलत नहीं है, नया नया ट्राई करना चाहिए ना। तो इसलिए एक अलग रीति से, अलग दृष्टिकोण से देखना और उसको अपने में ढाल के वापस आना, देखो आपको कितनी शांति की अनुभूति होगी। तभी शक्ति का एहसास होगा, अनुभव होगा। और वहीं पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मंदिर क्यों बना है? मेडिटेशन करने के लिए। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, उधर अपने को आत्मा निश्चय करके जब परमात्मा के साथ कनेक्शन करेंगे, तो सामने जो प्रतिमूर्ति है शक्तियों की, वो आपको अपने अंदर एहसास होगा। और मंदिर का वातावरण तो और पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो आप मंदिर को मदद करना चाहते हो या मंदिर का हास करना चाहते हो? स्थापना तो हमने की है ना, तो पालना करनी पड़ेगी ना। तो मेडिटेशन करो जाके, पालना होगी मंदिर की। और आवाहन करो कि जो हमने ये गवाया है ना अपने पर्सनालिटी में, वो मुझे वापस लाना है। और उसमें किसकी मदद मुझे मिल रही है? शिव बाबा की। और कोई भी अनजान व्यक्ति की भी मदद मिलेगी समय पर। इतना जादू का खेल होता है ये, बहुत सारा बता सकती हूं, लेकिन अभी समय भी हमारा कह रहा है और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलने हैं। तो ये है अष्ट शक्तियां, मुझ आत्मा में बसने वाली अष्ट शक्तियां। एक बार लास्ट रिवाइज करें। सबसे पहली शक्ति संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। दूसरी शक्ति समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। तीसरी शक्ति सहन करने की शक्ति। चौथी शक्ति समाने की शक्ति, समाने की। फिर पांचवी शक्ति परखने की शक्ति। छठी निर्णय करने की शक्ति। सातवीं सामना करने की शक्ति। और आठवीं सहयोग देने और लेने की शक्ति। ठीक है? तो मैं कौन हूं? मैं अष्ट भुजाधारी, अष्ट शक्ति से भरपूर आत्मा हूं। तो ये है अपना आज का लेसन। इसमें ये बताया है कि जो ये संकीर्ण करना, समेटना, सहन करना और एकोमोडेट करना, ये हमको बनना है। ऐसा आप ऐसा बनेंगे तो आप सही रीति से डिस्क्रिमिनेट, मतलब परखना, निर्णय लेना, सामना करना और सहयोग देना लेना कर सकेंगे। तो ये जो चार शक्तियां, पहली है वो टू बी माना बनना, और चार शक्तियां टू डू माना करना। तो आप कब सही कर सकेंगे? जब सही बनेंगे। फिर ये संकीर्ण और समेटना एक साथ पार्टनरशिप में है, और सहन करना, एडजस्ट एकोमोडेट करना, ये पार्टनरशिप में है, और परखना, निर्णय लेना, ये पार्टनरशिप में है, माना एक दो के बिना अधूरे हैं, और सामना करना और सहयोग लेना देना, ये भी पार्टनरशिप में है। समझ आए कि ये दो दो शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिर अगर आपको संकीर्ण करना है तो उसके सामने की लाइन में देखो क्या दिया गया है। परखना, जितना आप परखेंगे उतना आप संकीर्ण कर सकेंगे। परखेंगे नहीं तो आप चलते चलोगे, नो ब्रेक, नो पॉज। अगर आपको पैकअप करना है तो उसके सामने क्या है? अगर आप पैकअप करते हो तो आपकी निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी। तो ये कनेक्टेड है। फिर सहन करना है तो आपको क्या करना है? सहयोग देना है, लेना है। अगर आपको सहन करना है तो आपको सहयोग देना होगा, तब आपको सहयोग मिलेगा। फिर आपको एकोमोडेट करना है तो आपको नहीं सॉरी सहन करने के लिए सहन करने को बढ़ाना है तो हाँ सहयोग, और एडजस्ट एकोमोडेट करना है तो आपको सामना भी करना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे एकोमोडेट करेंगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ये शक्तियां है, माना ये मॉडल अधूरा है अगर एक भी शक्ति नहीं है। तो ये सभी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अभी कोई बॉस होता है ना, लीडर नहीं बॉस, तो वो कहां से शुरू करेगा? कि मैंने निर्णय लिया है, मैंने निर्णय लिया है, तुम्हें परखना होगा, तुम्हें एडजस्ट होना होगा, तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तुम्हें समेटना होगा, तुम्हें संकीर्ण करना होगा, तुम्हें मुझे सहयोग देना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम आए तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ये होता है बॉस। और लीडर जो होता है वो कहां से शुरू करता है, वो सुनता है, समेटता है, सहन करता है, एकोमोडेट करता है, परखता है, और फिर दूसरे उनको सामना करने में मदद करते हैं, सहयोग देने में मदद करते हैं, आप पे ही। समझा? तो लीडर का चक्कर अलग है, बॉस का चक्कर अलग है। हमको क्या बनना है? लीडर बनना है, इधर कोई फॉलोअर नहीं। या तो आप बॉस बन जाएंगे या तो आप लीडर बन जाएंगे। अगर माया आती है, नेगेटिविटी आती है, तो आप बॉस ही बनोगे, क्योंकि संस्कार तो ऑलरेडी है बॉस का। लेकिन अगर नया धारण करेंगे तो आप लीडर बनेंगे। ठीक है? तो हमेशा आपसे शक्तिशाली अनुभूति सबको होगी। ओके, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करें, उसके बिना अधूरा है ना। चल, हम ये जो सामने फूल दिख रहा है ना, उसी को आधार लेकर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? ओम शांति। जो फूल की पत्तियां है वो है हमारा शारीरिक संसार। ये शरीर से लेकर के, संबंधी से लेकर के, पदार्थों से, कार्य व्यवहार, जिम्मेवारी और प्रकृति के 5 तत्व, ये सब ये पत्तियों की तरह है। पर अब हमको समय मिला है कि हम इन पत्तियों से थोड़ा न्यारा होकर अंदर की ओर जाए। जैसे मधुमक्खी जाती है, ऐसे हम भीतर चले और जहां पर मैं आत्मा विराजमान हूं, जिसमें 7 गुणों की खुशबू है, जिसमें 8 शक्तियों की ताकत है, अविनाशी अनादि रूप से, शाश्वत रूप से। और अभी संकल्प करें कि अब से मुझ आत्मा में ये स्मृति बनी रहे कि परमात्मा पिता से जो पावर मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है, वो मेरे आंतरिक गुणों को और शक्तियों को रिचार्ज कर रहा है, मेरे अंदर की तमो प्रधान अवस्था को धीरे धीरे बदल रहा है, आत्मा की शुद्धिकरण कर सतो प्रधान अवस्था तक लेके जा रहा है। मुझ आत्मा की स्मृतियां बदल रही है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं अभी कहां हूं, कहां से आया हूं, मुझे वास्तव में कहां जाना है, मुझे यहां क्या करना है, मेरे लिए कौन जिम्मेवार है, ये है अपने आंतरिक जगत के कुछ प्रश्न, जिसका सही अनुभव करने का समय है। और ये पूरा फूल बता रहा है कि घर गृहस्थ में रहते हुए मैं आत्मा एक राजयोगी हूं। घर के व्यवहार, समाज के व्यवहार और खुद की इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, इन तीनों का विशाल परिवर्तन मैं आत्मा ला रही हूं। मैं वास्तविक रूप में आध्यात्मिक हूं। अब मुझे समय की भी वैल्यू है और सभी आत्माओं के पार्ट की वैल्यू है। सभी आत्माओं को इस सृष्टि पर अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे सभी प्रकार के फूल अच्छे होते हैं, यहां तक अक के फूल भी भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, ऐसे सर्व आत्माएं भी बहुत अच्छी अपना पार्ट निभा रही है। सभी की जागृति का समय अब है। मुझे अब से ऐसी शुभ भावना हरेक के प्रति रखनी है। मैं आत्मा शांत, शुद्ध, साइलेंस की शक्ति वाली हूं। अब फिर से हम इस हॉल के वातावरण में वापस आ जाए स्मृति से, लेकिन याद रहे कि आज सारा दिन हम कर्मयोगी और राजयोगी दोनों भी है। ओम शांति।